एक श्रद्धांजलि। वर्तमान वर्ष का अप्रैल महीना बड़ा अविस्मरणीय है। 100 साल पूर्व यही महीने के 23 तारीख को न केवल महाराष्ट्र को अपितु सारे भारतवर्ष को प्रकाशित करने वाली एक भारतीय कन्या पंडिता रमाबाई ने जन्म लिया। अपने सेवा कार्य के द्वारा सबों के आदरणीय बने हुए महर्षि अणासाहेब कर्वे 18 तारीख को पैदा हुए और 9 तारीख को अपने विश्वास के जरिए प्रभु की सेवकाई बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना शांत स्वभाव तथा नम्रता को बनाए रखने वाले रेवरेंड राघवेंद्र राव नेवासकर इस भूमि पर पैदा हुए। भले ही वे अपने समकालीनों मौलवी हिसामुद्दीन हुसैन, रेवरेंड तुकारामजी नथोजी, रेवरेंड नीलकंठ शास्त्री गोरे, रेवरेंड डॉक्टर नारायण शेषाद्री, रेवरेंड बाबा पद्मनजी, रेवरेंड धनजी भाई नौरोजी आदि की नाई बुद्धिमानी न थे, परंतु उनकी मसीही सेवकाई पर विचार करेंगे तो वे इनमें से किसी से भी कम न थे। भारत में आए हुए झिगेनबाल्ग जो पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे, उनकी नाई उनका रवैया था। झिगेनबाल्ग के ऊपर सताव लाने की योजना प्रांक्वेबार के गवर्नर ने बनाई थी, पर उन्होंने अपनी शांति को बनाए रखते हुए कहा था, तुम जितना मुझे सताओगे उतना ही अधिक प्रेम मैं तुमसे करूंगा। राघवेंद्र राव जब अपने घर के सामने के बालाजी मंदिर के सामने खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करते थे, तब लोग उन्हें सताया करते थे। यह सब दृश्य उनकी माँ घर के छत से देखा करती थी। यही माता अपने बेटे के मृत्यु पर रो पड़ी। सामने वाली गच्ची से जब मैं मेरे पुत्र को मार खाते हुए देखती थी तो मैं व्याकुल हो जाती थी, पर उसके चेहरे पर किसी प्रकार की खुशी दिख पड़ती थी। वह सब कुछ सहन करके वहां से आनंद भरी मुद्रा से लौट जाता था। राघवेंद्र राव के विषय पौड़ की मिशनरी मिस हार्वी इस प्रकार गवाही देती है, उनका स्वभाव बिल्कुल नम्र था। क्रोध क्या चीज होती है मानो उन्हें पता ही न था। राघवेंद्र राव नेवासकर की आत्मकथा के प्रकाशन पर डॉक्टर ग्रीनफील्ड राघवेंद्र राव के पुत्र को एक पत्र लिखते हुए जिक्र करते हैं। उनकी आत्मकथा का प्रकाशन अत्यंत जरूरी है। महाराष्ट्रीय हिंदी मसीही समाज में वे एक असामान्य जन थे। पौड़ क्षेत्र में मिस हार्वी तथा मेरे साथ बिताए हुए दिनों की सुखद स्मृति मुझे है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि देहाती लोगों के साथ किस प्रकार बर्ताव करना है। उन्होंने मुझे मराठी भाषा तथा स्थानीय लोगों के रीति रिवाज के बारे में भी सिखाया। देहाती लोगों के साथ बात करने में वे निपुण थे। उनकी किताब का मैं आतुरता से इंतजार कर रहा हूं। राघवेंद्र राव के पुत्र कहते हैं, गुस्सा उन्हें शायद ही आता था। कोई अगर गलतफहमी के कारण उनके ऊपर गुस्सा दिखाते थे तो भाई आप शांत हो जाइए, सच्चाई जानने के बाद आपकी खातरी होगी, ऐसा वे उन्हें नम्रता के साथ कहते थे। 1927 को राघवेंद्र राव की प्रस्तुत आत्मकथा की पांडुलिपि मेरे हाथ में आई। उस समय मैं ज्ञानोदय का संपादक था और बिनी के मसीही नामक एक लेखमाला मैंने शुरू की थी। उसी समय मैंने सोचा था कि यह आत्मकथा पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगी तो बहुत अच्छा होगा, परंतु वह योग आज 31 साल के बाद आ रहा है और आज का समय भी उसके लिए अनुकूल है। दूसरा, सब कुछ भूलने पर भी इस वर्ष लेखक की जन्म शताब्दी है, यह बात इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए बहुत ही अनुकूल है। आत्मकथा लिखना आसान नहीं है। बहुत सी बार लेखक को अपने आप को एक वकील साबित करने का लालच रहता है, परंतु राघवेंद्र ऐसे नहीं थे। वे आत्मसमर्थन विरोधी थे। उनके इस लेख में आत्मसमर्थन या आत्मप्रौढ़ी को बिल्कुल जगह नहीं है। इस बात को टालने के लिए लेखक ने अपनी मूल विस्तृत आत्मकथा से बहुत से हिस्से का निकास करते हुए एक संक्षिप्त आत्मचरित्र तैयार किया है जो आज पाठकों के सामने आ रहा है। पंढरपुर का विठोबा कितना सच्चा है यह देखने हेतु राघवेंद्र राव अपने बुजुर्ग चाचा के साथ पैदल पंढरपुर की वारी करके आए। पृष्ठ 13। उसी प्रकार अन्य तीर्थ क्षेत्रों को भेंट देकर शांति मिलती है या नहीं, इन बातों की प्रतिति उन्होंने की थी। पर उसके पहले उन्होंने अपने घर के व्यंकटेश बालाजी की परीक्षा ली थी, जिसके संबंध में उन्होंने लिखा है। व्यंकटेश की मूर्ति संबंधी मेरे मन में अत्यंत पूज्य बुद्धि थी और उस मूर्ति में कुछ तो सच जरूर होगा, इस प्रकार मेरा दृढ़ विश्वास था। पर एक दिन उसकी प्रतीति करने पर उसके ऊपर से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ गया। राघवेंद्र राव को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण उनकी सुसमाचारीय सेवा के फल का अंदाजा इस आत्मकथा द्वारा नहीं लगाया जा सकता। मात्र अन्य जगहों से प्राप्त जानकारी से पता चल जाता है कि उनके दीक्षा समय तक के काल में यानी 1916 तक उनके प्रचार कार्य द्वारा 79 पुरुष तथा महिलाएं मसीह के अनुयायी बने एवं 30 विश्वासियों को उन्होंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। संख्या को महत्व नहीं देना चाहिए, यह बात सच है, फिर भी यात्रा का अंदाजा लगाने के लिए मील के पत्थर उपयोगी होते हैं। हजारों नहीं, यद्यपि सैकड़ों लोगों ने उनकी वाणी पर विश्वास किया। इससे पता चलता है कि उनकी शिक्षा प्रभावशाली तथा उनकी वाणी नम्र थी। उनकी आमदनी बिल्कुल कम थी, पर उनका खर्चा भी बहुत कम था। इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण वे अपना घर परिवार ठीक रीति से चलाते थे। आमदनी कम होने के कारण वे कभी कुड़कुड़ाए नहीं, नहीं उन्होंने कभी असंतोष दिखाया। अगर कोई संकट में है तो वे उसे मदद करने के लिए दौड़ते थे। स्वयं के पास अगर पैसे न हो तो वे दूसरों से उधार लेकर लोगों की मदद करते थे। इस प्रकार के प्रसंग बारंबार आते थे। दाहिने हाथ का किया हुआ कार्य बाएं हाथ को पता न चले, इस ब्रीद वाक्य के कारण इन बातों की चर्चा कभी नहीं हुई। दोनों अर्थ से वे कभी पोशाकी मसीही न थे। उनके पोशाक को देखते ही वे एक भारतीय प्रतीत होते थे तथा अपने चाल चलन द्वारा मसीहत को उन्होंने कभी छिपाने की कोशिश न की। एक बार कुछ काम से उन्हें कोल्हापुर जाना पड़ा। स्टेशन से बाहर आने पर वे चाय की तलाश में इधर उधर देखने लगे। वहां एक ब्राह्मण का भोजनालय था। चाय मिलेगी क्या, राघवेंद्र ने पूछा। हाँ, चाय एवं कुछ खाने को भी मिलेगा, आइए अंदर। भीतर से प्रतिसाद मिला, मैं एक मसीही हूं, अगर आपको कुछ आपत्ति न हो तो अंदर आऊंगा। पर आप मसीही नहीं दिखते। यद्यपि मैं ख्रिस्ती नहीं दिखता, मैं सचमुच में एक ख्रिस्ती मसीही हूं। मामूली चाय के कप के लिए भी मैं अपनी मसीहत क्रिश्चियनिटी को नहीं छिपाऊंगा। इस भोजनालय वाले ने उन्हें देखते ही भीतर बुलाया और कहा, पानी तैयार है, स्नान करेंगे आप, फिर ऊपर अपने घर ले चले। चाय पीने के बाद दोपहर को खाने के लिए आग्रह का निमंत्रण दिया। खाना खाते समय भोजनालय वाले ने राघवेंद्र राव के पैर छुए और उनके ही साथ भोजन पर बैठा। उन्होंने कहा, मेरे पैर क्यों छूते हो? मैं कोई ईश्वर नहीं। वह निराधार बालक था जिसे राघवेंद्र राव ने बचपन में आश्रय दिया था। वह इस बात को भूला न था। पर वह आत्माराम है, यह उन्होंने पहले पहचाना नहीं था, इसलिए भीतर जाने के पूर्व मैं एक मसीही हूं, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया था। कोई कहेगा मसीही हूं करके बताया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज 1958 साल में यह बोलना आसान है, पर उस समय के बारे में सोचेंगे तो यह बहुत ही कठिन था। 60 वर्ष पूर्व अगर कोई ख्रिस्ती व्यक्ति किसी ब्राह्मण के घर जाता था तो वह उठके जाने के बाद ही जहां वह व्यक्ति बैठा होगा और उस ख्रिस्ती व्यक्ति के आने जाने के मार्ग पर झाड़ू लगाया जाता था। शायद यह बात आज किसी को सच्ची नहीं लगेगी, पर ऐसी परिस्थिति थी और ऐसी परिस्थिति में हम मसीही है इस बात को बताना कितना धीरज तथा जोखिम भरा काम था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। राघवेंद्र राव की जीवनी से एक बात स्पष्ट होती है कि वे अत्यंत निष्ठावान मसीही थे। आरंभ में, जैसे कि जिक्र किया गया है, कि वे पोशाकी मसीही कभी नहीं थे, वे दिल के मसीही थे। बुजुर्गावस्था में वे अपना बाइबल हमेशा पढ़ते थे और विशेषकर रोमियों की पत्री 8वां अध्याय के 15 आयत से लेकर आखिर तक का भाग वे अपने बेटे तथा बहू को सामने बिठाकर उनसे पढ़वाते थे। शास्त्रलेख पढ़ते समय उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहते थे, उनके चेहरे पर खुशी छा जाती थी। अपने प्रभु के नाम के लिए तथा उसके सुसमाचार के लिए वे कुछ कर सकने के लायक बने, यह विचार उन्हें अपने क्लेश में आनंद दिया करता था। वैसे भी ये वचन बड़े ही सांत्वना देने वाले हैं, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा। क्लेश, संकट, सताव, भुखमरी, नग्नता या तलवार, क्या ये हमें अलग करने पाएगी? क्योंकि ऐसा शास्त्रलेख है, तेरे कारण हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। नहीं, नहीं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। वे 6 अगस्त 1921 को शांति से अपने प्रभु पिता परमेश्वर के पास चले गए, मृत्यु पर जयवंत होकर प्राण देह में से निकला। उनकी कब्र पर पवित्र शास्त्र में से लिखा हुआ वचन मसीही जीवन के अर्थ को प्रकट करता है। Kept by the power of God, परमेश्वर की सामर्थ्य से रक्षित, 1 पत्रस 1:5, नाशिक 9 अप्रैल 1958, देवदत्त नारायण तिलक।